खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम उसके कलाम को सीखना शुरू करें, आए हम सब चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुकें और अपने दिल दिमाग सोच ख्यालात को उसके सुपुर्द करेंगे। कादर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, तेरे कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है। सो आज हम जो कुछ भी सीखें, तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और हम सब इस ज़मीन पर तेरे मकसद को और तेरे मंसूबे को पूरा करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे साथ निकाले नए अहदनामों में सेफसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसकी पहली 10 आयात में से हम सीख रहे हैं। आज हम 10वीं आयत पर गौर करेंगे। सो इससे पहले कि इस कलाम के हिस्सा में से सीखें, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस हमें हुक्म करती है कि हमें हर रोज़ ईमानदारों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। आज मैं कुछ ख़बरें पढ़ रहा था तो उस ख़बर में ये बताया गया कि कोई मसीही ख़ानदान है जो एक ख़ानदान के 20 लोग थे, उनके 40 किलों पर, ज़मीन के 40 किले थे जिस पर उस गांव के दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया क्योंकि वो मसीही हैं। सो उस ख़ानदान के लिए दुआ करें और फिर दूसरे जो हालात बिगड़े हुए हैं हमारे मुल्क में और दुनिया भर में, उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करें। और एक और मुल्क में तकरीबन पिछले में भी हफ्ते से ज़्यादा दिन हुए हैं कि 50 से ज़्यादा ज़िंदा मसीही लोगों को एक बहुत गहरे कुएं में फेंक कर उनको ज़िंदा दफन किया गया क्योंकि वो मसीही हैं। सो मसीही बहन भाइयों के लिए, ईमानदारों के लिए हर रोज़ दुआ करें, आप एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। सो आपकी हौसला अफज़ाई के लिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है वो सब आपके लिए दुआ करते हैं। बेशक उन्होंने आपको नहीं देखा, बेशक वो आपको नहीं जानते, लेकिन वो दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको कुव्वत और ताकत और हर तरह के मुसीबत के हालात में दिल की मजबूती दे ताकि हम मसीह में मजबूत रहें और फलते जाएं और बढ़ते जाएं। और बहुत से वाकयात हैं, अगर हम बात करना शुरू करें तो बहुत से वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। सो अपने मसीही बहन भाइयों को ज़रूर दुआ में याद रखें। अगर दिन में 5 मिनट ही मिलते हैं तो उन 5 मिनट में ज़रूर उन कैदी, मज़लूम, मुसीबत ज़दों को जो ख़ानदान मुसीबत और मशक्क़त और मज़लूम लोग हैं जो ज़ुल्म का सामना करें, उन सब के लिए दुआ की ज़रूर कीजिए, कम से कम 5 मिनट। सो ये वो चंद एक बातें थी, बहुत सी कहानियां हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इस वक्त बयान की जाए क्योंकि दुरुस्त नहीं है। सो आपसे रूबरू जल्द मुलाकात होगी और मेरे और मेरी बीवी के लिए भी दुआ करें ताकि जब हम वापस आएं तो खुदावंद हमें बाख़ैरियत आपके दरमियान लाए ताकि हम उसके जलाल और उसकी गवाही और सच्चाई की बातें सीखने वाले बने। सो आज हम 10वीं आयत पर गौर करेंगे। सो इससे पहले कि हम 10वीं आयत पर गौर करें, मैं चाहता हूं कि 10वीं आयत को ख़त्म करने से पहले दूसरे बाब की पहली 9 आयत को पढूं और उसमें से चंद एक बातें याद दहानी के तौर पर करना चाहता हूं। सो पालूस रसूल इफिसियों के खत उसके 2 बाब उसकी पहली आयत में इस सच्चाई को बयान करता है और फरमाता है, और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यहाँ पर पालूस रसूल ईमानदारों को बयान करता है कि एक वक्त में तुम मुर्दा थे, बगैर खुदा के थे लेकिन तुम्हारी हालत मुर्दा थी, खुदा से दूर थे, लेकिन उसने तुम्हें क्या किया, जिंदा किया। और उस मुर्दा हालत में वो बयान करता है, जिन में तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। यहाँ पर वो उस हवा की अमलदारी के हाकम के बारे में बात करता है जिसे इबलीस कहा गया है, जिसे झूठ बोलने वाला कहा गया है, जिसका काम है ख़ानदानों को तबाह व बर्बाद करना, जिसका काम है बहुत दफ़ा कलीसियाओं को बर्बाद करना और ख़ानदानों में और कलीसियाओं में जुदाई डालना। और ये इबलीस का काम है झूठ बोलना, फरेब देना, नीचा गिराना और खुदा की सच्चाई को झूठ बनाकर पेश करना ताकि लोग गुमराह हों। इसलिए बाइबल मुकद्दस हवा की अमलदारी का हाकम झूठ बोलने वाला, फरेबी, दगाबाज और दूसरे बहुत से नामों से पुकारती है। और तीसरी आयत में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फरजंद थे। सादा लफ्ज़ों में वो बयान करता है, जब हम नए तौर पर पैदा नहीं हुए थे, जब हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, जब हमने उसके ऊपर ईमान लाने के वसीला से नई पैदाइश हासिल नहीं की थी, वो कहता है हम सब किस्म जिस्मानी ख्वाहिशों में और गज़ब के फरजंद यानी कि नाफरमानी के फरजंद थे। गज़ब के फरजंद से मुराद यानी कि हमारी जो हालत, हमारा जो मकाम और हमारा जो अंत या आखर था वो गज़ब था, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है जो कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, निजात दहिंदा, अपना निजात देने वाला, वो उस खुदा के गज़ब और खुदा के कहर को उसका मज़ा चखेगा। और इसीलिए वो कहता है दूसरों की मानत तबई तौर पर गज़ब के फरजंद थे यानी कि खुदा के गज़ब में थे, लेकिन पालूस क्या कहता है, उसने तुम्हें उस गज़ब से निकाल कर क्या किया, ज़िंदा किया। और ये किस तरह हुआ, चौथी आयत, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। ये सब कुछ क्या कैसे हुआ, अगर आज आप ज़िंदा हैं, अगर आज आप सांस ले रहे हैं तो ये किस तरह है, खुदा की अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। और यूहन्ना के खत में पाँचवें बाप में, पहला यूहन्ना उसका पाँचवा बाप हमें बताता है कि हमने पहले मोहब्बत नहीं की बल्कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की। हम मोहब्बत को नहीं जानते थे और इसी से हमने जाना कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। और इसीलिए यूहन्ना की इंजील क्या कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने पहले मोहब्बत की। और मोहब्बत क्या है, मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती, मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, मोहब्बत दूसरों की भलाई चाहती है, मोहब्बत कुर्बानी देती है। और यही बात खुदा ने की, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। उसकी मोहब्बत किस तरह ज़ाहर हुई, सलीब पर, कि जब हम गुनाहगार ही थे कि खुदा ने हमको, जो गुनाहगार थे उसके दुश्मन थे, अपनी मोहब्बत हम पर ज़ाहर की। सो पांचवी आयत में पालूस बयान करता है खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत और उसके रहम के सबब से हम ज़िंदा हैं जिस्मानी तौर पर, और उसकी मोहब्बत के ही सबब से हम रूहानी तौर पर उसके ख़ानदान के लोग हैं। और वो कहता है पांचवी आयत में, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे यानी कि एक वक्त था, वो माजी की बात कर रहा है, वो ईमानदारों से, जैसे आप जो यहाँ पर ईमानदार हैं। ईमानदार किसे बाइबल मुकद्दस कहती है? उसे नहीं कि जो कोई सच बोले। बाइबल मुकद्दस ईमानदार उसे कहती है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है और उसकी पैरवी करता है, उसके पीछे चलता है, उसकी उसके ऊपर ईमान रखता है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत दफ़ा ईमानदार उसको कहा जाता है जो, मिसाल के तौर पर, अगर किसी कारोबार में है, वो झूठ ना बोले, दगा ना करे, तो उसे क्या कहते हैं? ईमानदार। लेकिन बाइबल मुकद्दस ईमानदार किसको कहती है? जो खुदावंद यस्सु पर ईमान लाता है वो ईमानदार बन जाता है। और ईमानदार का काम क्या है? सच्चाई की पैरवी करना, सच्चाई के बारे में बात करना, सच्चाई के बारे में बताना। सो पौलुस कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, जिंदा किया। और हम सब जानते हैं कि मुर्दा लोग ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना चल फिर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहता है? उसने हमको जिंदा किया। किस तरह? क्योंकि तुमको फजल ही से निजात मिली है। मौत से हमें छुटकारा मिला किस तरह? खुदा के फजल से। और छठी आयत में वो कहता है कि ना सिर्फ हमें जिंदा किया, बल्कि छठी आयत में कहता है और यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया। मसीह में शामिल करके, जैसे कोई अगर अमीर ख़ानदान में शामिल कर दिया जाए तो उसे वो तमाम शान और शौकत और तमाम दूसरी दुनियावी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पालूस बात कर रहा है और मसीह में शामिल करके, मसीह में दाखिल करके, मसीह में शामिल करके, मसीह के साथ हमारी शनाख्त, हमारा मकाम, हमारा दर्जा। वो कहता है मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। ये आपकी और मेरी और हर उस मसीही ईमानदार की, जिसने यीशु को कबूल किया है, आसमानी हालत है। आसमान पर बहुत बड़ा अजर है, आसमान पर बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत जगह है, जिसके बारे में हमने पहले सुना है कि यीशु मसीह ने जाने से पहले शागिर्दों से क्या कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार करूँ। और यहाँ पर क्या कहा गया है? आसमानी मकामों पर, आसमानी जगह, आसमान पर जाकर घर तैयार करूँ। और आप सबको याद है ये बात मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में यही बात कही थी कि अपने लिए ज़मीन पर ख़जाना जमा ना करो बल्कि आसमान पर। और हमारा ख़जाना किस तरह आसमान पर जमा होता है? जब हम उस पर ईमान ला कर उसकी बातों को मानते हैं, उसके लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, जब उसके खातर दुख उठाते हैं, तो मत्ती 5 बाप में क्या लिखा है? अफसोस ना करना जब तुम मेरे नाम के सबसे सताए जाओ और ठुकराए जाओ और दुख उठाओ और मुसीबत उठाओ, तो परेशान ना होना क्योंकि तुम्हारा आसमान पर बहुत बड़ा अजर है। सो यही बात पालूस यहाँ पर कह रहा है कि हमें मसीह में शामिल करके आसमानी मकामों पर बिठाया। मसीह के साथ हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, इसे कभी ना भूलें। ये बहुत ही अनोखी शनाख्त है। और सातवीं आयत में कहता है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। आपको याद होगा लाजर, वो गरीब लाजर जिसके जिसका जिस्म फोड़ों से, नासूर से भरा हुआ था, और अमीर आदमी के दिल को भी आप जानते हैं, जो इतना मुनासिब नहीं समझता था कि उस गरीब लाजर को पूछे। तो क्या हुआ जब वो मर गया? तो लाजर कहाँ पर था? लाजर आसमान पर इब्राहिम की गोद में। और वो अमीर शख्स कहाँ पर था? अजाब की जगह में। तो यहाँ पर पालूस सूर बताना चाहता है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में है हम पर आने वाले ज़मानों में जाहर करे, अपने फ़ज़ल की बेनहाय दौलत दिखाए। अगर आज आप ठुकराए जा रहे हैं, अगर आज आप सताए जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा उसकी बादशाही में वो कहेगा मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ और बादशाही करो। ये किन के लिए है? हर उस ईमानदार के लिए मौका है कि ज़मीन पर यीशु मसीह के लिए ज़िंदगी गुजारे। और जिन लोगों ने दिक किया है, जिन लोगों ने इनकार किया है, वो देखेंगे कि हमारा खुदावंद कितना कुदरत वाला और उसमें आपका और मेरा मकाम क्या है। 8वीं आयत, और वो कहता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है। बहुत से लोग इस बात का ढोल पीटते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो निजात मिलेगी, अगर हम कुछ खुदा को पेश करेंगे तो निजात मिलेगी। हदिया, नजराना, शुक्रगुजारी, सोना चांदी और कोई और जानवर। लेकिन पालूस यहाँ पर वाजह कर देता है, तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश है, खुदा का तोहफा है। निजात क्या है? तोहफा है, और हम इसे सिर्फ ईमान से वसूल करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब मैं पिछले साल यहाँ पर था तो 12 नौजवानों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने निजात के तोहफे को कबूल किया। और क्या कहता है? अगर कोई कहता है कि मैं निजात हासिल करूँगा अपने कामों से, तो पालूस कहता है ना, ये वो इस बात के फरेब में ना रहे। वो कहता है 9वीं आयत में, और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र ना करे। हमें फ़ख्र, हमें भरोसा, हमें यकीन अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि खुदा के तोहफे पर है। और फिर 10वीं आयत में पालूस कहता है, तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, तुम्हें निजात मिल चुकी है, तुम खुदा के ख़ानदान के लोग हो, तुम्हारी पहचान खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और तुम्हारी हालत रूहानी तौर पर तुम आसमानी मकाम पर हो, और ज़मीन पर तुम एक मकसद के लिए हो। और इस ज़मीन पर जो मकसद है, ज़मीन पर जो सफ़र हम गुजारेंगे, ज़मीन पर जो हमारी दौड़ है, ये दौड़ दुखों से, मुसीबतों से, खुशियों से और बहुत सी दूसरी अजीब और मौजज़ाना बातों से पुर है। और यही बात पालूस कहता है 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, खुदा आपके लिए बहुत ही अच्छा मकसद रखता है। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में सीखेंगे कि हम इस ज़मीन पर क्यों हैं, हमें क्यों निजात मिली है, किस वास्ते हम इस ज़मीन पर सांस ले रहे हैं, या और जानेंगे कि किस वास्ते हम इस ज़मीन पर हैं। इसलिए ताकि खुदा के उस नेक इरादे को जिसके लिए हमें पैदा किया है पूरा करें। वक्त कम है, आए हम खुदा के जुड़ चुके, इसलिए हर रोज़ खुदावन से हिकमत और दनाई मांगे कि खुदावन मुझे अपनी ज़िंदगी में तेरा मकसद पूरा करने की कुव्वत और ताकत दे, और इस कलाम को जो बाइबल मुकद्दस है अपने नज़रों से ना हटाएं। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर कोई घर में नहीं पढ़ सकता तो उस बहन और बेटी और भाई से कहे कि मुझे सिखाओ। जल्द हम कोशिश करेंगे कि जो बहनें पढ़ी लिखी हैं वो उनको पढ़ाएं जो नहीं पढ़ सकते हैं। आए हम दुआ करें, क्योंकि खुदा का कलाम अनमोल है, भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी और मुर्दा लोगों के लिए ज़िंदगी की सांस है। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, और मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी तेरे लोग मुसीबत, दुख, परेशानी का सामना करें, खुदा उनके ख़ानदानों को इत्मीनान और तसली दे। इसी तरह खुदा खुदा बाबे तफ़ैल के ख़ानदान के लिए भी तुझसे तसली और इत्मीनान चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब को छू और बड़ी बरकत दे। आमीन।